نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي synopsis of Quran Quran ki jhalkiyan walaqad yassarna al-Quran lidh-dhikri fahal min mudakkir aaj isme hum para 2 sayaqulu sufaha isko karenge आइए पिछले पारे की तरह सबसे पहले इस पारे के मेन टॉपिक चीज़ें ये है आपके लिखने की बात बाकी तो टू फास्ट है वो दौरे कुरान में लिखेंगे आप उसमें भी लिखवाऊंगी आपको नाम इंशाल्लाह और जो इस साल का थीम है उससे मिलाकर आपको टॉपिक दिए जाएंगे तो सयकूल पारा क्या है अगर आप पारा टू के मज़ामीन को देखें नंबर एक किबले की तब्दीली तहवील किबला दूसरी अहम चीज़ आयत बिर है जब आएगी 177 तो उस पर बात करेंगे तीसरा किस्सा ताऊन आखिर में पारे के कुछ किस्से हैं जिसमें से ताऊन की वबा फैली और फोर्थ किस्सा तालूत ख़त्म ये चार चीज़ें पूरे पारे में कैसे है आइए देखते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 142 से 252 तक ये पारा यानी इस पूरे पारे में सिर्फ सूरत बकरा ये बड़ी मज़े की बात है आप नोट कर लें इंटरेस्टिंग बात है सूरत बकरा तीन पारों पर मुहित है ना पहले पारे में भी सूरह फातिहा है तीसरे पारे में सूरत आले इमरान है लेकिन दूसरा पूरा पारा सूरत बकरा का है ये एक ब्यूटी है इस पारे की जिसको आप देखेंगे सयकूलु सुफहाउ मिनन्नासी मा वल्लाहुम यहाँ से ये मज़मून शुरू होता है इस पूरे पारे में थोड़ा सा पीछे से जोड़ूंगी हर पारे को जोड़ा करूँगी अभी हमने पहले पारे के एंड पे क्या देखा था कि अल्लाह ने बनी इसराइल को तीन दफ़ा पुकारा बार बार का सीधे हो जाओ अल्लाह ने तुम्हें नबियों की कौम से उठाया है तुम दुनिया को अल्लाह से जोड़ो ये फ़ायदों के हरीस हो गए हम एक खाना नहीं खा सकते हमसे सब्र नहीं होता बछड़े को पूछने लगे जब बार बार के रिमाइंडर्स के बाद बनी इसराइल ना माने खिलाफत की जिम्मेदारियां ना लीं तो अब इस दूसरे पारे में आपको और मुझे वी मोहम्मद अब्दुल्ला ईसा मूसा और आयशा खदीजा सुरैया जो मुसलमानों के नाम है ये पारा आपका मेरा सुभान अल्लाह अल्लाह ताला इस बारे में मुसलमानों को बताते हैं कि नाउ इज़ योर टर्न नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट व्हाट यू विल डू उनको मौका दिया वो नहीं माने तुम्हें मिल जाएगा अब तुम क्या करते हो अब देखिए लोग बड़ी तनकीद करते हैं ना बेटियां माओं पे तनकीद करती रहती हैं अक्सर आप ये करती वो करती आपको घर नहीं चलाना आता जब खुद माँ बनती हैं तो लग पता चल जाता है फिर कहते हैं नहीं मेरी अम्मी बहुत अच्छा घर चलाती थी तो आइए ज़रा इसके टॉपिक्स को देखें और इस पूरे बारे में झगड़े ही झगड़े हैं आपको पहले ही झगड़ा है क्या है देखते हैं 142 से 143 उम्मत मुस्लिमा का मुकाम और ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह कहते हैं वक़ज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास फिर आयत 144 से 145 में किबले की तब्दीली का हुक्म 146 से 147 में बनी इसराइल को हक छुपाने का जुर्म उसकी सज़ा है और अगर आप ये शुरू की तकरीबन दो रुकुओं को इकट्ठा कर लें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब थे तो आप बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके इबादत करते थे जब मदीना में आए तो बैतुल्लाह तो पीछे रह गया तो आपने बनी इसराइल यानी यहूद मदीना को अपने से मानूस करने के लिए फेमिलियर करने के लिए बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ी 16-17 महीने सिर्फ इस पे गुजरे लेकिन अल्लाह के नबी का दिल तो मक्का में जुड़ा हुआ था तो ये सारी चेंज आई इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे आजकल गज़ा में क्या हो रहा है आप इस कोर्स को मेरे साथ पूरा कीजिए इंशाल्लाह हम आगे जाकर अटलांटा से एक कोर्स करने वाले हैं असल वारिस कौन अलकुद्स असल वारिस कौन है एक छोटी सी बुक है वो पढ़ानी है किसी भी मौके पे आप इन्हीं दिनों से रमज़ान के इन बिटवीन सुनेंगे कि नसर मिनल्लाह व फतहुन करीब का मतलब क्या है तो आज बच्चे बच्चे को इस मज़मून को पढ़ने की ज़रूरत है इंशाल्लाह इस साल के टॉपिक की वजह से मुझे उम्मीद है कि दौरे कुरान का पारा टू जो इंशाल्लाह हमारा 28 फरवरी को होगा इस साल भी पिछले सालों की तरह हम पहला पारा दो दिन में करेंगे ताकि ज़रा सा आप जज्ब करें अभी आप देखेंगे पहला पारा आपको फास्ट लगा था अभी दूसरा कम लगेगा और तीसरे तक आपका हाथ सेट हो चुका होगा नई चीज़ ऐसी लगती है ना तो इंशाल्लाह हम इस पारे के शुरू में उसको करेंगे क्योंकि हमारे थीम से ये बहुत मिलता है अभी तो बस ये सीख लीजिए कि अल्लाह चाहते हैं कि बहसों में ना पढ़ो फस्ता बिकुल खैरात। ये क्या है, इख्तलाफी बातें, फिकी बातें, वो ये कहते हाथ इधर बांधो हाथ उधर बांधो, तुम्हारी मस्जिद मेरी मस्जिद, बहस बहस बहस। अच्छा मत मुसलमान बहसों में, आपको पता है कि तारीख खोल कर देखिए, हलाकू खान ने जब मुसलमानों पे हमला किया था उस वक़्त बगदाद की गलियों चौकों पे क्या बहसें थीं। कवा हलाल है के हराम, बुराक हलाल है के हराम, मिसवाक की लंबाई कितनी हो, और दुश्मन आ गया। हम छोटी छोटी फिरोही बहसें साइड इश्यूज़ में खोकर दुश्मन को मौका देते हैं कि आकर वो हम पर हमला करे। तो आयत 148 का टॉपिक बहुत ही प्यारी आयत है, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में दौड़ करो, क्या पता कल क्या हो। आज आप खुद आए हैं, कल अपने साथ बस एक दोस्त को ले आइए, बस परसों दो को ले आइएगा, अगले दिन तीन को ले आइएगा, जहाँ मौका मिलता है। अकेले आने में भी उतना ही पेट्रोल लगा, चार लोग और बिठा लीजिए। ये है ज़िंदगी, थोड़ी है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। फिर आयत 149 से 150 में किबले की तब्दीली के हुक्म की रेपिटेशन है, यानी अल्लाह ने बार बार किबले की तब्दीली की बात की। आयत 151 से 152 में नबी सल्लम का एजुकेशनल सेटअप यानी मेथडोलॉजी ऑफ द प्रॉफिट, पांच नुकात हैं इसमें कि आज भी किसी इस्लाम के नाम पे कायम इदारे में क्या होना चाहिए। हदीस नेमत के लिए बता दूं कि आप जिस इदारे के नाम के साथ इस वक्त बैठे हैं, ये सिर्फ एक तारुफ़ के लिए कहूँगी कि नूरुल कुरान की मेथडोलॉजी भी यही है कि कुरान के तालीम, तदरीस, तज़किया, तरबिया। आज कुरान बहुत है, तजवीद बहुत है, हिफ्स बहुत है, ग्रामर बहुत है, लेकिन तज़किया और तरबिया में कमी है। अल्लाह करे कि हमारी वो कमियाँ भी दूर हो जाएँ। आयत 153 से 154 में अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही कि वो लोग जो मेरे रास्ते में शहीद हो रहे हैं तुम उनको मुर्दा ना कहो। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता, किसी ने कितनी दिल में उतरने वाली बात कही कि हमारे गज़ा में शहीद होते बच्चों का गम ना मनाओ, वो नहीं मर रहे, अपने बच्चों के इस्लाम के मरने की फ़िक्र करो। तुम्हारे बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे दुनिया छोड़ रहे हैं, बताओ तुम ज़्यादा ख़तरे में हो कि हम हो। इसलिए वस्ताईन बिस्सब्री वस्सला। फिर आयत 155 का टॉपिक है मसाहिब खमसा, पांच आजमाइशें। अल्लाह की राह में आजमाइश तो आ करेगी, कभी गज़ा में, कभी यमन में, कभी आपको बोस्निया में, कभी बर्मा में, आती रहेगी, ये तो चलता ही जाएगा, ये तो डे वन से शुरू था। तुम अपने करने के काम करो, अल्लाह दुश्मनों को खुद ही निपट लेगा। फिर आयत 156 से 157 में मुसीबत पड़ने पर सच्चे मोमिन की क्या दुआ होती है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। इसी को बड़ा करें, जब भी चाहे बिजली भी चली जाए, कभी कोई चीज़ गिरती है टूटती है, उस पर भी यही मांगिए। फिर 158 अल्लाह की राह में हाजरा की बेकरारी की याद। यहाँ आप ख़वातीन हैं इसलिए एक बात दो कहने की इजाज़त दीजिए कि बीबी हाजरा भी तो मेरे आप जैसी औरत थी, बुढ़ापे का बच्चा, अकलौता बच्चा, शोहर बूढ़ा, उसको रोटी पानी नहीं देना था मियाँ को, उसको अपने बच्चे का दूध नहीं था चाहिए, लेकिन उस औरत ने एक मिसाल कायम कर दी, इब्राहिम ने एक मिसाल कायम कर दी, क्या अल्लाह के घरों को आबाद करने के लिए अगर अपने घर थोड़े से बेबाद भी हो जाएं तो कुछ नहीं होता, किसी ने हमें इस घर में नहीं दफनाना, तो अपने घरों को वजह ना बनाएं, वल्लाही खाइए पिए, घर साफ करें, कपड़े पहने, लेकिन इसकी वजह से अपनी नमाजें ना छोड़ें, अपना कुरान ना छोड़ें, टाइम नहीं है, आ नहीं सकते। और अक्सर लोग तो कहते हैं हम दौरे कुरान भी घर से ही करेंगे, नहीं हम नहीं जा सकते, नहीं घर से भी नहीं करेंगे, जब बाद में करेंगे, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। आगे 159 से 160 हक़ को छुपाने वालों पर अल्लाह की लानत है। दुआ कीजिए ये कुरान पढ़ लें, आप ये कुरान पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, आप में से कोई सिस्टर ऐसी हैं जिन्होंने कभी भी कुरान नहीं पढ़ा तर्जमे से, यानी दौरे कुरान नहीं किया, हैंड रेस करें, बस ये फिर आपके लिए है। यकीन करें पहली दफ़ा का कुरान पहली मोहब्बत होती है, आप आंसुओं से रोएंगी। मैं अक्सर जहाँ पढ़ाती मैंने कहती जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे, जो उनके चेहरों पर एक रंग आ रहा होता है, एक जा रहा होता है, उम्मीद और खौफ, मुशफ़िकून वाली कैफियत, मैं उसको इंजॉय करती हूँ, मुझे अपना याद आ जाता है कि ये कुरान लोग पढ़ते हैं, झूमते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, इमाम साहब और बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है इसमें क्या है। फिर आगे देखिए 161 से 163 में हक़ को जानबूझकर छुपाना कुफर है, ये है इसका टॉपिक। और इन सारी बातों को देखें तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि हक़ के रास्ते में कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। इस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानियों का वक्त है, अल्लाह गज़ा वालों को नहीं आज़मा रहा, आपको मुझे आज़मा रहा है। ये उन गरीबों की आजमाइश नहीं, ये हम अमीरों की आजमाइश है। अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे। तो एक घराने के सब्र की बात करके इब्राहिम और हाजरा बीबी का सब्र दिखाकर हम सबको आज एज अ पेरेंट सिखा दिए कि तुम्हें भी सब्र करना पड़ेगा, वरना याद रखो ये किताब लोगों तक ना पहुंची, कल लोग तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। और इसी तरह इसमें फिर तौबा से मुतल्लिक कुछ चीज़ें। फिर आयत 164 अल्लाह ताला की बेमिसाल निशानियों का तذکرہ ہے, اور اس کے بعد آیت 165 سے 167 میں دنیا دار قائدین کی پیروی کا حسرتناک انجام۔ کسی نے ایک مجھے ویڈیو بھیجی انیمیشن کے ساتھ ہی، ایک چھوٹی سی دیوار ہے ایسی فیو فٹ اونچی، کتوں کا ایک ٹولہ ہے، ایک کتا اس دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور آپ سوچیں یہاں سے لے کے اتنی دیوار ہے، وہ ایسے چل رہے ہیں تو پھر ادھر سے گھوم کے پھر ادھر، تو اس کے پیچھے کتوں کا ٹولہ بھاگ رہا ہے، وہ سب جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہیں گھوم رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے نیچے کمنٹ لکھا ہوا تھا کہ جو عقل نہیں استعمال کرتی عوام، ان کے لیڈر ان کو ایسے ہی بیوقوف بناتے ہیں، جہاں کھڑے تھے وہیں کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ آیت 168 سے 171 حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین، اور 172 سے 173 کھانے کے حقیقی آداب ہیں۔ 174 سے 176 علماء سو پر اللہ کا غضب، دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے کہ جن کے ایسے علم ہو اور اس لیے چھپا لیں کہ اپنا عمل نہیں ہے، یا اس لیے چھپا لیں کہ پھر لوگوں کو اگر اصل بات بتا دی تو پھر دین مشکل ہوگا، لوگ ہمارے پاس آئیں گے نہیں۔ میٹھی گولی جو ڈاکٹر دے گا نا، لوگ کہیں گے اس کے پاس جاؤ، کڑوی گولی انجیکشن دینے والے ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو صحت چاہیے۔ تو اس سارے سلسلے سے آپ کو مجھے عمل کے نقطے کیا ملے، پوائنٹس آف ایکشن، کہ اللہ کی رحمت اور پانے کے لیے کائنات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لیڈرز یا بڑے بڑے مذہبی یا سیاسی رہنما خود حق پہ نہیں ہیں، ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ پھر ہم نے ان ساری آیات میں ابھی تک سیکھ لیا کہ حلال اور طیب کھانے ہیں، اور شیطان کے قدموں پہ نہیں چلنا کیونکہ وہ ہمیں بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کی راہ عقل اور بصیرت کی راہ ہے، تقلید سے بچنا ہے، عقل استعمال کرنی ہے اور عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو اور خوب اچھے کام کرو، یہ ہے دین کا خلاصہ۔ کیونکہ جب ہم بالکل دنیا کو کنڈیم کرنے کی دعوت دیتے ہیں نا، تو وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا، آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ لوگوں کے ڈر سے نہ اچھا پہننا چھوڑے، نہ اچھا کھانا چھوڑے، صرف کھانے اور پہننے کے بعد اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں نے کیا کیا ہے، اس انرجی سے جو مجھے کھانے سے ملی یا باقی چیزوں سے۔ اس کے بعد یہ ہے جی آخری حصہ پارے کے اندر سے مین بڑا حصہ۔ آپ نے نوٹ کیے پہلے پارے کے اندر 10 رکوع تھے، بنی اسرائیل سے متعلق تھے، رائٹ؟ یہ حصہ 177 سے آن ورڈ کہاں تک؟ جہاں تک قصہ تالوت اور جالوت، یعنی آخری دو قصے ختم نہیں ہوتے۔ یہ پورا حصہ اسی کا سائملٹینیسلی امت مسلمہ کے لیے، کیسے؟ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی کا جامع تصور، یعنی اسلام A to Z۔ چند رسومات کا نام دین نہیں ہے، دین تو ایک پوری حقیقت ہے، جیسے درخت کی نیچے جڑیں ہیں، پھر اس کے اوپر شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھر کہیں پھل ہے نا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ درد کے ساتھ کہوں گی، ہمیں جو حصہ سمجھ آتا ہے وہ کر لیتے ہیں، عقیدہ خراب ہے لیکن نوافل پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے لیکن ہم سوشل ورک کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سیریز جو بھی ہم کر رہے ہیں، اس کے اینڈ پہ آپ کا یہ اسلام A to Z کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، بسم اللہ اللہ نے چاہا۔ نیکی کی قسمیں کیا؟ پوری شریعت ہے، جس میں 178 سے 179 میں ناحق مقتول کے قصاص کا حکم ہے، 180 سے 182 میں وصیت کے احکامات ہیں۔ دیکھیے ہمارا دین بستر مرگ تک کی بھی حقیقت بتاتا ہے، یعنی جینا تو جینا سکھاتا ہے، جانا بھی سکھاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 183 سے 184 میں روزوں کا حکم ہے، یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے اس وقت۔ 185 رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کی بات ہے۔ 186 دعا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ذرا آپ بھی تو اچھی سی دعا مانگیں اس وقت اپنے لیے، میں بھی مانگتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی ہر دعا سنتا، کسی تیسرے کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ फिर आयत 187, मुसलमानों और यहूद के रोज़े में क्या फ़र्क है? उहिल्ला लकुम लैलतस्सियाम अर्रफ़स। आप कहते हैं कि हमारी तो रातों में खा भी सकते हैं ना, पिछली कौमों में तो रात भी रोज़ा होता था। अल्लाह ने हमारा दीन आसानियों का दीन बनाया। आयत 188 में रिश्वत और एक दूसरे के माल नाहक खाने की ममानियत है। ये नंबर जल्दी से नोट कर लें। अपने मुल्कों में कहते हैं कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता, कोई उसको चाय पानी कहता है, कोई उसको अंडर दी टेबल कहता है। कहाँ लिखा है कुरान में? 188 सूरत बकरा। यह आयत का नंबर आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। 189, नेकी का खुद साख्ता रसूमात से कोई ताल्लुक नहीं। मक्का वालों ने अपनी मर्ज़ी का दीन बनाया हुआ था, आटा हाथ से गिर जाए तो मेहमान आता है, काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो सफ़र मनहूस होगा, एहराम बांधा था अगर बग़ैर उमरा हज किए वापस घर में आगे कुछ लेने के लिए तो बड़ा ही ये बदशगुनी होगी। क्या पता चला सुपरस्टिशियस का हमारे दीन में कोई हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा दीन को मजाक नहीं समझो। जितनी बातें अभी तक हमने पढ़ी उसका खुलासा ले लीजिए कि हम पढ़ें एक सामे बिर नेकी की किस्में। इस्लाम एक मुकम्मल दरख्त की तरह ग्रो करता है। हमें अपने दीन को सीखना है और जो कुरान का एटलीस्ट तर्जमा पढ़ जाता है उसको पूरी दीन की बेसिक बातें समझ आती हैं। आज हमारी उम्मत ने नहीं पढ़ा, अफसोस के साथ कहना पड़ता। इसीलिए फिर जो मौलवी साहब कहते हैं वो मान जाते हैं, जिस मसलक के इमाम साहब ने जो बात कही लोग उसको मान गए। आज ये कुरान कितनों को आता है? मैं अपने आप से सवाल करती हूँ, आप भी अपने से कीजिए कि जब आप कुरान पढ़ती हैं तो आपको समझ आता है? नमाज में इमाम साहब ईशा की जमात में कुछ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा? बस नहीं आता तो इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद आयत 190 में अल्लाह की राह में लड़ने का हुक्म है, वक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह में। और 191 से 94 में फितना कत्ल से बड़ा है। देखिए जिहाद दीन का एक पूरा बड़ा हिस्सा है, एग्ज़ाम में बिर में आ रहा है, हम इसको शरीयत से नहीं निकाल सकते, पर कब कहाँ कैसे करना है इसके लिए हमें डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है कि इसके आदाब क्या हैं। फिर आयत 195, हलाकत से बचने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करो। जो कौम कलम ख़रीदने पे खर्च नहीं करती ना, याद रखिए उसको हथियार ख़रीदने पड़ते हैं। अगर आज हमने दावा मटीरियल आम किया होता, कुरान आम किए होते, हमारा माल इस्लाम की नशरो इशात में लग रहा होता ना, तो फिर तीर तलवार और हथियार ना ख़रीदने पड़ते। हम दुश्मनों की दुश्मनी क्यों नहीं ख़त्म करते? आज से अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाइए, दावा दावा और दावा। फिर आयत 196 से 99 तक हज और उम्रे के काम आते हैं। इन सारों को देख लीजिए तो हज पे जाने वाले लोग दो किस्म के होते हैं, ज़रा अपने लिए भी चेक करें। एक हज करके भी दुनिया ही मांगते हैं, नहीं बेटा लेने जा रही हूँ, बेटी की शादी करवाने जा रही हूँ, रिश्ता लेने जा रही हूँ, घर अपना है, ठीक है मांगिए, लेकिन साथ आखरत भी मांगिए। दूसरे वो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। फिर इससे पता चला कि फितना फसाद बहुत बुरी चीज़ है, हत्ता के कत्ल से भी बुरा है। और दुनिया में हसना क्या है? वो माल मिले जिसे अल्लाह नाराज़ ना हो और उसका हिसाब ना करे। गाड़ी रखना कोई गुनाह नहीं, आप एक नहीं चार गाड़ियाँ रख लें कोई गुनाह नहीं है, शर्त यह है कि हराम से ख़रीदी ना हो और हराम पे इस्तेमाल ना हो और आखरत में भी अल्लाह उसके बाद आपको दे। फिर इसी तरह से दीन की मामलात में कुछ सख्ती है लेकिन इबादात में सख्ती नहीं है। जो लोग अपने आप को पसंद करते हैं अल्लाह उनको उन्हीं के खौल में बंद कर देता है। बहरहाल आयत 200 से 202 में सिर्फ दुनिया के तलबगार ना बनो, दुनिया भी मांगो आखरत भी मांगो। बस लोग कहते हैं नहीं दुनिया नहीं मैंने मांगनी, क्यों नहीं मांगनी? हमेशा कहा करे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। फिर आए 203, अय्याम तशरीक यानी हज के बाद, जो हमारे यहाँ ईद टरू मरू चार दिन जिसे नाम ईद की दावतें खाने पकाते रहते हैं उसका तस्करा है इसमें। फिर आए 204 से 206 में दो किरदार हैं, अल्लाह हमें दूसरा बना दे। पहला कौन है? नापसंदीदा बातें करके खुश करता है, वमिन नासी में यू जीवो का कौलू हो। लेकिन एक दूसरा किरदार आय 207 में वमिन नासी में यशरी नफ्सहुब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा चाहने वाला, या अल्लाह हम तेरी रज़ा चाहने के लिए आए, हमसे राज़ी हो जा और अल्लाह हमें हमारी नस्लों से तो राज़ी हो जा। फिर आए 208 से 210 तक दीन की मुकम्मल इताअत का हुक्म। ये है असल में आज के पूरे इस पारे में से अपने लिए लेने वाली चीज़ क के पूरे दीन में आ जाओ। पहले पारे में क्या थी बनी इसराइल के लिए आयत? अब आप तो इतनी फास्ट नहीं चलेंगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट मेरा दिमाग फ़ौरन पीछे जा रहा है। अफतू मनु नबी बातिल किताब ही वतक फुरू नबी बात, आयत 83 आई थी पिछले पारे में। वहाँ बनी इसराइल को कहा था, आज उम्मत मुस्लिमा को भी बता दिया तुम अधूरे दीन में हो, तुम्हारा एक पाँव गाड़ी में और एक बाहर है, गाड़ी चलेगी तो गिर जाओगे, एक पाँव लिफ्ट में हो एक बाहर हो। तो क्या पता चला कि उम्मतों में बिगाड़ की वजह ज़िद्द और जाहिलियत भी होती है और अधूरा दीन मांगते हैं, पूरे नहीं आते। लोग कहते दीन और दुनिया रखो। मैंने अभी पिछले दिनों इस पर 2 लेक्चर हुए हैं इसी USA कैनेडा ट्रिप के दौरान कि दीन और दुनिया का बैलेंस क्या होता है। ये तो फ्रेज़ ही गलत है कि दीन भी रखो दुनिया भी रखो। हमारा सारा दीन दुनिया में है। बीवी के मुँह में लुकमा डालना दीन है कि दुनिया है? बीवी को मोहब्बत से देखना दीन है कि दुनिया है? सब कुछ है, दीन है हमारा। तो क्या हम कोई चीज़ कह सकते हैं दीन और दुनिया का फ़र्क? ये कहो कि गुनाह और सवाब भी करो, कुछ नेकियां भी करो कुछ गुनाह भी करो, तो बात भी बनती है। तो बहरहाल उम्मत वसत तुम्हें अल्लाह ने बनाया, नेमतों का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। फिर शर में से खैर निकलती है, हमने इसमें यह पढ़ा है आसान तक रहू शयन। ये जो जंग लगी हुई है ना गज़ा की, उधर मुसलमान शहीद हो रहे हैं और इधर लोग मुसलमान हो रहे हैं, एंड पे रेशो प्रोपोर्शन एक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो तकदीर से लड़ना नहीं, उसको कबूल करना है। हाँ, हिजरत और जिहाद रहमत के रास्ते के कह लीजिए माइलस्टोन है। और इसके बाद आए 211 से 13 तक, ना शुक्री से नेमते छिन जाती हैं। सल बनी इसराइल अकमाते इनाहुम, और आए 214, बहुत मेरी फेवरेट आयत है, आप भी इसको सुन लें। अम हसिब तुमन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान किया है कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे? यानी जन्नत सस्ता सौदा नहीं, मुफ्त में नहीं मिलती, कमानी पड़ती है जन्नत। क्या पता चला कि बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय छोटे छोटे काम शुरू कर दो, एक दिन जन्नत में पहुंच जाओगे। तुम्हें अल्लाह की मदद मिलेगी, सब्र करो, इस्तकामत इख्तियार करो। और जिनको अल्लाह से मुलाकात का यकीन है वो अल्लाह के हुक्मों से कभी सर नहीं उठाते। तो 2 मुख्तलिफ किरदारों के ज़रिए अल्लाह ने आपको मुझे बता दिया कि तुमने किस में अपने आप को शामिल करना है। और अब आयते बिर की बिल्कुल आखिरी झलकियों में से 215 से 17 इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और जिहाद का बयान है। और आयत 218 में अल्लाह की रहमत की उम्मीद कौन रखे, इसको ज़रूर बाद में पढ़िए सुनिएगा, क्योंकि मकसर कहते हैं अल्लाह रहम करेगा, करेगा इंशाल्लाह, मगर किस पे, उसका तस्करा है। आए 219 से 220 में शराब जुआ और पंसे, 3 सवालों के 3 जवाब। यहाँ देख लीजिए कि बस हल्का सा जिक्र करके शराब का छोड़ दिया, अगले पारों में आप इसकी मज़ीद अगले अगले अहकाम को देखेंगे। आए 221 निकाह, तलाक, इद्दत, पीरियड्स, बच्चे को दूध पिलाना, कितने पर्सनल मैटर्स हैं अल्लाह ने कुरान में पेश कर दिए। यहाँ से 221 से ऑनवर्ड एटलीस्ट 3 रुकू ख़वातीन से मुतल्लिक, घरेलू ज़िंदगी, शोहर बीवी के रिलेशन की क्या हदें हैं, इसी में मुसलमानों का मुशरिकों से निकाह हो सकता है कि नहीं, आपका बेटा नॉन मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है कि नहीं, आपकी बेटी किसी गैर मुस्लिम से शादी कर सकती है कि नहीं, इन आयतों में उसका जवाब छुपा हुआ है। फिर आए 222 से 223 में पीरियड्स की बातें हैं, हैरत की बात नहीं है? आप कुरान को पता नहीं क्या समझते हैं, ये डे टू डे मैनुअल है, शर्म नहीं है? डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ नहीं छुपाते। अल्लाह ने शोहर बीवी के ताल्लुकात की बात करके बताया कि अल्लाह के सामने पेश होने की तैयारी करो, इन ताल्लुकात में भी हदों से मत गुज़रो। फिर आए 224 से 225 में एक किस्म का तलाक का मौजू शुरू हो रहा है, नेकी ना करने की कसम मत खाओ। और आए 226, 27 ईला क्या होता है, एक मर्द 4 माह से ज़्यादा बीवी से दूर नहीं रह सकता, उसके बाद बीवी को इख्तियार है कि भाई मुझे रखो या छोड़ो। हमारा कल्चर कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कितनी आंटियाँ सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार के ज़िंदगी चली गई और शौहर ने सारी ज़िंदगी तरीके से बात भी ना की। ना कुरान औरतों को हकूक़ देता है। किसी ने कहा था कि अगर मुझे यकीन ना होता कि कुरान मोहम्मद ने लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं कहता कि इस कुरान को एक औरत ने लिखा है, हालांकि उसकी पहली बात भी गलत है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा ना किसी औरत ने, बल्कि बल हुआ कलामुल्लाह। और अल्लाह ना करे किसी फैमिली में तलाक की नौबत आ जाए, आती है, हलाल है, तो 228 लिख लें, 228 میں طلاق رجعی کی بات ہے، 229 میں خلع لینے کی اجازت، یعنی ایک لڑکی بھی طلاق لے سکتی ہے تو کیسے، اور آیت نمبر 230 سے 32 میں طلاق حسنہ ہے. اگر بچہ بھی ہے ماں کی گود میں اور طلاق کی نوبت آ گئی تو 233 میں رضاعت، یعنی بچے کو دودھ پلائے گا کون، ماں کے پاس بچہ رہے گا یا باپ کے پاس رہے گا، یہ مسائل ہے. 234 میں بیوہ کی عدت کیسے ہے، اور آیت 235 میں عدت کے دوران دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور 236 سے 237 میں رخصتی سے پہلے ہی طلاق کا مسئلہ آ گیا. کتنے نکاح ٹوٹ رہے ہیں آج، اس کا مسئلہ ہے کہ نکاح کر دیا چار سال بعد، بعد میں جی لڑکا کہتا ہے میں نے نہیں اس سے رہنا، لڑکی نے نہیں رہنا، تو پھر طلاق کیسے دی جائے گی. اور ان ساری باتوں کو سنتے وقت آپ کو لگ نہیں رہا کہ قرآن بڑا گھریلو ہے؟ ہمارے کہتے ہیں نا گھریلو ڈرامے، گھریلو فلمیں، قرآن طلاق کے طریقے بتا رہے ہیں آپ کو. اور جب کبھی گھروں میں ایسے جھگڑے آتے ہیں تو نمازیں جاتی ہیں، ہر ایک رو رہا ہے، ڈوڑ رہا ہے اس کی باتیں اس کی. تو آئے 238 سے 239 میں نماز کی بات کی کہ ان بحثوں میں پڑھ کر نمازیں نہ ضائع کرو، حافظ الصلاوات، نماز دین کے لیے حصار ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 240، یعنی نماز کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر نمازیں نہ ضائع کرو. 240 میں دیکھیے بیوہ کے حق میں وصیت، کوئی عورت جب شوہر فوت ہو جائے تو کیا کرے، بیوگی کے کیا معاملات ہیں. 241 سے 242 میں چھوڑ رہے ہو، میاں بیوی الگ ہو گئے، اب ان کو تن ہو کے تحفے نہ دو، باتیں نہ کرو، ڈانٹ نہ کرو، الزامات نہ لگاؤ، بلکہ کیا کرو، حسن سلوک کرو، تحفے دے کے چھوڑو، متا دے دو. ہمارے ہاں استغفر اللہ کہتے ہیں، اب اس کو آگے بھی کہیں نہیں بسنے دیں گے. تو یہاں پہ وہ پارے کا بڑا ٹاپک پورا ہوا جو آپ کو شروع میں دیا، کہ شریعت اسلام کا خلاصہ ہے پورا اس میں. اور اب آخری پارٹ میں 243 سے 244 میں موت کا خوف تمہیں جہاد سے نہ روکے. الم تر الذین خرجوا من دیارہم، پچھلی قوموں کے قصوں میں سے قصہ. اور آیت 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا کی بات. 246 میں قصہ طالوت جالوت جو آپ کو شروع میں بتا دیا، الم تر الملأ من بنی اسرائیل، اس میں اصل میں واقعات بتا کر مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر آنے والی ہے مدینہ میں جانے کے بعد، تو لہٰذا ابھی سے تیار ہو جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے. اور 247-48 میں مال کی اہمیت نہیں علم کی ہے، یعنی لیڈرشپ کوالٹیز کے لیے پیسے والوں کو نہ چنو، علم والوں کو چنو، اور مضبوط جسم والوں کو، اچھی پرسنالٹی والوں کو چنو. 249، اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے. آج اس کی عملی تصویریں دنیا غزہ میں دیکھ رہی ہے، بڑے بڑے بلٹ کے مقابلے میں وہ پتھر مار رہے ہیں ان کو. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، مسلمانوں کی تو شان ہی ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ تھوڑے تھوڑے اسباب ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس ہمیشہ اسباب زیادہ ہوتے ہیں. تو غم نہیں کرنا، ایمان کو بڑھا لیجئے، اسلحے کی کمی پوری ہو جائے گی. اور 250 سے 252 جو پارے کی آخری آیتیں ہیں، مجاہدین فی سبیل اللہ، ولما برزوا لجالوت وجنودہ میں وہ قصہ بیان کیا گیا. سارے پارے میں سے آپ نے میں نے کیا سیکھا، زیادہ نہ بولو، من نجا من سم، جھگڑے، باتیں، یہ باتیں، دین کی باتیں. آج آپ دیکھیں ہر ایک جھگڑتا ہے. کبھی آپ کوئی ٹاک شو دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اس سیاستدان اس کے خلاف، وہ پارٹی وہ اس کے خلاف. چپ رہیے، کم بولیے. اور اس بارے میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، کسی اور جگہ اللہ خرچ کرا دے گا. گاڑی خراب ہو جائے گی، پائپ لیک کر جائے گا، پھر دو گے نا، تو اگر اللہ کے رستے میں دیا ہوتا تو وہ بچ جاتا. اور اسلام کا نظریہ جہاد کیا ہے کہ خاتمہ ہو فتنے کا، اور آخرت مانگنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے. یہ بات آج لکھ کے جائیے گا. آپ اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو اس ڈور سے نکال کر وہ سیڑھیوں میں کھڑا کر دیا جائے، پھر کیا ہوا، یہ تو اتنا اچھا بڑا روم ہے، وہ تنگ سا ہے. آپ کہتے نہیں مجھے نیچے مین ڈور سے باہر جانا ہے، تو کیا یہ بیچ کا رستہ خود ہی نہیں آئے گا؟ بس آخرت مانگنے والے کو دنیا پہلے ملتی ہے، اور میں آپ کو اس کی گواہی دے سکتی ہوں. دنیا مانگیں گے، صرف دنیا ملے نہ ملے آپ کا نصیب، आखिरत मांगेंगे, दुनिया मुफ्त में रुल के मिलेगी लोगों को, जो चीज़ें पैसों से खप खप के मिलती हैं अल्लाह आपके पाँव में निछावर कर देगा। तो लिहाजा झगड़े नहीं करने, घरों में झगड़ा ना करें, सियासत में, दीन में। और अनापरस्त और नफ्स परस्त जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे झगड़े करते हैं। फिर इसी तरह अपने छोटे से बुरे आमाल को बड़ा समझिए और दूसरों के बड़े बड़े बुरे आमाल को छोटा समझिए, झगड़े नहीं होंगे। और इंशाल्लाह हमने अपनी भी इस्लाह करनी है और दूसरों की भी करनी है। दुआओं की कबूलियत में रिस्क हलाल अहम है, इसको लेने की कोशिश करनी है और ज़ुबान को कम इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पारा पूरा हुआ। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही वअस्हाबिही अजमाइन।